शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली बहुत ही शिक्षाप्रद है, पर शिक्षा के साथ साथ बाबा ने प्यार भी बहुत किया है। और यही बच्चे, यही बाबा सिखाते हैं, किसी को भी शिक्षा दो परंतु ऐसी कठोर बातें भी नहीं कहो जो उसको दुख पहुंचे। शिक्षा भी दो, साथ में रहम भी करो और क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। ये तीनों साथ साथ हो सकता है? या तो शिक्षा देंगे या तो चलो रहम किया छोड़ो, परंतु शिक्षा भी जरूरी है, नहीं तो वो सुधरेगा कैसे? और उससे भी ऊंची बात कि हर कर्म में, हर वचन में, हर सोच में दुआएं दो, दुआएं लो, चारों सब्जेक्ट्स द्वारा दुआएं दो, दुआएं लो। तो बहुत ही गहरी मुरली है आज, एक एक लाइन अति महत्व की है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। और आज उस समय कई वीआईपीज आए थे, प्रोग्राम बड़ा हुआ था, तो वो कांटेक्ट में थे, संबंध में भी थे और अच्छे वीआईपीज भी थे, तो वो सब रुक गए थे बाप दादा से मिलन मनाने लिए। तो बाबा ने उनको भी बहुत प्यार से संबोधन किया है, वो भी हम सुनेंगे। आज 25/5/2025 है, 5/5/5, 25/5/2025। और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 4/9/2005 की। शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। गृहस्थ में रहते हैं तो गृहस्थ आश्रम वैसे मानते हैं, लेकिन आज की दुनिया में गृहस्थ आश्रम कहाँ रहा? गृहस्थ अधर्म हो गया है, क्योंकि आपस में इतना लड़ते हैं, संबंध है लेकिन लड़ते हैं, तो गृहस्थ अधर्म बन गया है। तो आश्रम किसको कहा जाता है? जहाँ आश्रय मिले, जहाँ संतुष्टता मिले, जहाँ खुशी मिले, जहाँ प्यार मिले, जहाँ पर सम्मान मिले, जहाँ पर ठिकाना मिले, वो सब आश्रय आश्रम उसको कहते हैं। तो गृहस्थ आश्रम आज नहीं रहा, तो बाबा कहते हैं कैसे गृहस्थ आश्रम बनाओ। तो शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्यूरिटी की रेखाएं देख रहे हैं। मूली ही प्यूरिटी से शुरू की है। प्यूरिटी क्या है? प्यूरिटी रॉयल्टी है, प्यूरिटी पर्सनालिटी है। आज बाबा ने इसका भी विस्तार किया है। आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्यूरिटी की रेखाएं देख रहे हैं। कहां दिखाई देती है प्यूरिटी की रेखाएं? मस्तक में। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। पवित्रता ही केवल सुख या शांति की जननी नहीं है, पवित्रता सभी गुणों की जननी है। सारे गुण पवित्रता के आधार पर ही अनुभव होते हैं। इसीलिए कहते हैं अगर जीवन में मूल्य है तो जीवन का भी मूल्य है, अगर जीवन में मूल्य नहीं तो जीवन का भी मूल्य नहीं। और वो मूल्य कहाँ से शुरू होते हैं? पवित्रता से। पवित्रता की रेखाएं कौन सी है जानते हो? पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। केवल सुख शांति की जननी नहीं है, पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद सब गुणों की जननी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। अगर पवित्रता नहीं है मानव जीवन में तो पशु से भी बदतर है। पशुओं की भी ब्रीडिंग सीजन होती है, कोई सारा साल नहीं वो विकारी बनते, उनकी सीजन होती है। लेकिन मनुष्य की तो कोई सीजन है ही नहीं, हाँ विकारी कभी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो देवताएं पवित्र है, और पवित्र है इसलिए ही माननीय भी है और पूजनीय भी है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो ना, क्या हाल है मानव जीवन का, क्योंकि पवित्रता नहीं है। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया। कौन सा वरदान दिया? ब्राह्मण जन्म लेते ही पवित्र भव योगी भव, सबसे पहला वरदान यही बाबा ने दिया। यज्ञ की शुरुआत में भी जब सब बाबा के बच्चे बाबा के पास आ गए तो बाबा ने सबसे पहले यही कहा, बच्चे अब सबको पवित्र बनना है, पवित्र बनना है, योगी बनना है। और सब ने प्रतिज्ञा की। बस ये प्रतिज्ञा जो की यज्ञ में शुरू में, उससे ही विरोध हो गया कि ये छोटी छोटी बच्चियों से आपने कैसे प्रतिज्ञा करा ली, ये तो छोटी है, इनको क्या पता अपवित्रता भी कोई चीज होती है। तो हाँ 18 साल की हो जाए तब समझ आती है पवित्रता क्या है, योगी जीवन क्या है, तो छोटी बच्चियों को क्यों करा दिया। फिर इससे इतना विरोध हुआ, जो केस हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो बाबा कहते थे ये मैंने नहीं कराया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा कोई दोष देते थे, ये तो शिव बाबा ने कराया। और शिव बाबा ने तो मुझे भी कहा, मैं भी तो परिवार में रहता हूँ, ग्रस्त बाबा का था परिवार, तो बाबा ने मुझसे भी ये प्रतिज्ञा कराई, तो मैंने तो इनसे नहीं कराई। तो देखो सारा दोष जैसे बाबा पर आ गया। लेकिन यही तो आधार है हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, पवित्र भव योगी भव। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जन्म का वरदान ही यह है, पवित्र भव योगी भव। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल चलन कैसी होगी? अगर पवित्रता नहीं है तो चाल चलन कैसी होती है? और पवित्रता है तो तो उसकी चाल चलन चेहरा चमकता है। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में अब पवित्रता कोई मुश्किल नहीं है, तो बाबा इसको कैसे ये सहज है वो स्पष्ट करते हैं। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है। आदि अनादि दोनों स्वरूप हमारा पवित्रता है। आदि गुणों में सबसे पहला गुण तो पवित्रता है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है, अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। अनादि माना जो सदा ही है, और आदि माना जब सत्युग में आए, तो आदि अनादि स्वरूप है ही पवित्रता। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनकी जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनालिटी दिखाई देती है। पवित्रता ही रियलिटी है, वास्तविकता है, असलियत है पवित्रता। पवित्रता ही रियलिटी है, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चाल में दिखाई देती है। रियलिटी भी है, रॉयल्टी भी है, जो चाल और चलन में चेहरे पर दिखाई देती है। ये रेखाएं जीवन का श्रृंगार है। रियलिटी है कौन सी, वास्तविकता क्या है? मैं अनादि आदि स्वरूप, इस स्मृति से समर्थ बन जाता है। रियलिटी है मैं अनादि आदि स्वरूप, इस स्मृति से समर्थ बन जाता है। यूनिटी मेरा आदि अनादि स्वरूप है, ये स्मृति आते ही समर्थ आ जाती है। रॉयल्टी है, क्या रॉयल्टी है? स्वयं भी स्वमान्य और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला, ये रॉयल्टी आ जाएगी। रियलिटी को समझा, वो स्वरूप में लाए, तो रॉयल्टी आ जाएगी। कौन सी? कि स्वयं भी स्वमान्य और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला। क्योंकि मेरे अंदर प्योरिटी है, तो मैं सबको सम्मान भी दूंगी और स्वयं भी उस सम्मान में रहूंगी। पर्सनालिटी फिर क्या है? व्यक्तित्व क्या है? रियलिटी रॉयल्टी आ गई, फिर पर्सनालिटी क्या है? सदा संतुष्टता और प्रसन्नता, उनके चेहरे पर उसकी वो पर्सनालिटी बन जाएगी, व्यक्तित्व बन जाएगा। सदा संतुष्टता और प्रसन्नता, स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाला। पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत है। क्या क्या प्राप्तियां होगी पवित्रता से? बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है? जैसे ही पवित्रता आई जीवन में, क्या क्या प्राप्तियां कराई है वो जानते हो ना? कितने खजानों से भरपूर किया है। इसलिए अब तक जो भी मूल्यां चली, बाबा ने हमारे भाग्य के ही गुण गाए हैं। तो बाबा कहते हैं कितने खजानों से भरपूर किया है, अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाए। कई बार प्राप्ति है लेकिन पता नहीं चलता है, क्योंकि उसके बारे में सोच ही नहीं, समझते ये टेकिंग फॉर ग्रांटेड, ये तो मेरा है ही है, इसके लिए सोचना क्या। लेकिन जब उसको सोचते हैं तब लगता है कि कितना बाबा ने हमें भरपूर किया है। दुनिया में तो किसको ये कुछ भी नहीं है। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाएं। सबसे पहला खजाना दिया है बाबा ने हमको, चार सब्जेक्ट्स दिए पढ़ाई के, ज्ञान योग धारणा सेवा। अब चारों सब्जेक्ट से क्या प्राप्ति हुई है वो बाबा ने बताया। सबसे पहला खजाना दिया है ज्ञान का खजाना। अब ज्ञान के खजाने से क्या होता है? जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते। क्योंकि ज्ञान नहीं है तो अंदर में चिंताएं रहती है, अंदर में दुख होता है, बहुत सारा अंदर मन ही मन परेशानी होती है, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। ड्रामा का भी ज्ञान नहीं है, खुद का ज्ञान नहीं है, कर्मों का ज्ञान नहीं है, तो ये सब बातें आती है। तो जो ज्ञान का खजाना बाबा ने दिया है, जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते हैं, व्यर्थ संकल्प किस किस से मुक्त होते हैं, दुख अशांति से, फिर व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प विकल्प विकर्म से भी मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हैं। व्यर्थ संकल्प आया, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर बाबा याद, फिर याद आता ड्रामा, तो ड्रामा समझने से वो व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप लग जाता है। तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हैं। अब दूसरा खजाना याद या योग, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है। बाबा से शक्तियां लेते हैं योग बल से, और योग तो जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है, और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। सहन शक्ति भी आ गई, समाने की शक्ति आ गई, परख शक्ति, ये सब शक्तियां आ गई बाबा की याद से। तो जो समस्याएं आती भी है, पर शक्तियों के बल से वो समस्याएं बाबा कहते हैं सहज पार कर लेते हैं। तीसरा खजाना है धारणाओं का खजाना, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। योग से शक्तियों की प्राप्ति, धारणा से गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है सेवा का खजाना, सेवा के खजाने से क्या मिलता है, जिससे सेवा करने से जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती है, वो दुआएं मिलती है। ये भी कितना बड़ा खजाना है, दुआओं का खजाना। खुशी प्राप्त होती है सेवा की, इमीडिएट उसी समय फ्रूट क्या मिलता है, खुशी। तो खुशी प्राप्त होती है। इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा की जो बाबा बातें बताते हैं, मुरली में ही बताते हैं, तो ये सबको खजाने एक जैसे ही देते हैं। कोई को कम, कोई को जास्ती नहीं देते हैं, लेकिन लेने वालों में फर्क हो जाता है। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर क्या करते हैं, खाते पीते मौज करते और फिर मौज में खत्म कर देते। खाते पीते और मौज करते फिर मौज में खत्म कर देते हैं। बाबा की मुरली सुनी, बड़ा नशा चढ़ा और फिर बाहर गए, ओम शांति, यहाँ सोडा वाटर हो गए, उस समय क्लास में ही चढ़ा और बाहर गए, किसी ने कुछ कह दिया, मूड ऑफ हो गए, मानो क्या हुआ, प्राप्ति खत्म ना। और कईयों को तो हम देखते हैं, ये भी एक समझते बड़ी शान है, वास्तव में होना नहीं चाहिए। जब भी हम आते हैं ना, हम देखते हैं रास्ते पर या सीढ़ियों पर या यहाँ तक भी वो मोबाइल पर मुरली सुनते हैं। अरे भाई, तो मुरली में आए हो तो मुरली बाबा की क्लास में सुनो ना। वो मोबाइल चलाते चलाते वो सुनते सुनते आते, क्या आपका, क्या आप सुन सकेंगे, आप तो चल रहे हो, इधर उधर देख भी रहे हो और मुरली क्या सुन रहे हो, आवाज ही आवाज होता है। ये भी अपनी शान समझते, अरे मेरे पास मोबाइल है, मैं मुरली सुन सकता हूँ मोबाइल से। बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है। बाबा के पास आते हो सवेरे योग युक्त होकर आओ, यानी कि मुरली सुनते सुनते चलते चलते ऊपर आते, तो वैसे ये भी नहीं होना चाहिए। फिर तो पता नहीं स्विच ऑफ करते भी हैं या नहीं, या अब चलती है। इसीलिए बहुत ध्यान देना है, बाबा की मुरली में आओ तो उस समय बिल्कुल योग युक्त होके आओ। तो बाबा कहते हैं, कि कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते और फिर मौज में खत्म भी कर देते हैं, और कोई बच्चे, ये दूसरे प्रकार के बच्चे, खाते पीते मौज करते जमा भी करते हैं, थोड़ा बहुत जमा भी करते हैं, और कोई बच्चे कार्य में भी लगाते लेकिन बढ़ाते जाते हैं। इनका सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, स्वरूप बनते माना बढ़ाते जाते हैं। बढ़ाने की चाबी है चाबी क्या है बढ़ाने की खजानों को? चाबी है खजाने को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। जो यूज करता है वो बढ़ाता है, वो खजाना खुद के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना, तो जो यूज करता है वो बढ़ाता है। तो अपने आप से पूछो कि ये विशेष खजाने जमा है, जमा है, क्या कहेंगे, हाँ या थोड़ा थोड़ा? जिसके पास ये खजाने जमा है वो सदा भरपूर रहता है। देखो कोई भी चीज भरपूर रहती है ना, मटका भी है एकदम पूरा भरा हुआ है तो हलचल नहीं होती है, आधा भरा हुआ है तो और उसको उठा के चलो तो कहते हैं ना अर्ध गगरिया छलकत जाए, वो पानी उछलता रहता है, पर पूरा भरा हुआ होता है तो उछलता नहीं है। तो आप देखो कोई भी चीज भरपूर रहती है ना तो हलचल नहीं होती है, अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल होती है, हिलती है। कोई भी चीज को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो वो हिलती है। तो यहां भी अगर सर्व खजानों से भरपूर नहीं है तो हलचल होती है। सदा ये नशा रहे कि बाप के खजाने क्या है, नशा कौन सा रहे, बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मेरे ही खजाने हैं। बाप ने दिया आपने लिया तो सब खजाने किसके हुए, आपके हो गए ना। तो जिसके पास खजाने हैं वो कितना नशे में रहता है, दुनिया में भी थोड़ा धन जरा ज्यादा है तो पता नहीं क्या नशा चढ़ जाता है। तो जिसके पास खजाने हैं वो कितने नशे में रहता है, जैसे छोटा सा राजा का लड़का, राजा है उसका बेटा छोटा है, बहुत छोटा है बच्चा है, राजकुमार होता है, पता भी नहीं है उस बच्चे को कि बाप के पास क्या क्या खजाना है, लेकिन नशा तो रहता है कि बाप के खजाने मेरे खजाने हैं और खजाने की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम रहती है तो उसका कारण क्या होता है, अब खुशी में रहता है वो बच्चा राजकुमार है, लेकिन अगर उसकी खुशी कम हो जाती है तो उसका कारण क्या होता है। हाँ यहाँ भी बाबा के बच्चे तो शहनशाह के बच्चे हैं, शहनशाह है ना, तो परंतु यहाँ भी खुशी कम हो जाती है तो क्या होता, क्यों होती है, बाप ने तो खजाने दिए हैं, सुना, हाँ बाबा ने दिया ज्ञान दिया सुना, लेकिन एक है सुनने वाले दूसरे हैं समाने वाले। जो समाने वाले हैं वो नशे में रहते हैं, अगर समाया नहीं तो फिर नशा नहीं रहेगा। तो समाने वाले जो हैं वो नशे में रहते हैं। आज नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, नए बच्चे बैठे थे बहुत, बाप दादा ने आप लक्की बच्चों को आप सबके भाग्य की मुबारक दे रहे हैं, सभी लक्की बच्चों को अपने उनके भाग्य की मुबारक दे रहे हैं। अपने भाग्य को पहचाना, पहचाना है परमात्म प्यार अविनाशी प्यार, जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये समय भी संगम संगम युग भाग्यवान युग है। सत्युग में तो भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान वर्षा प्राप्त होता है, अखंड भाग्य दो युग तक चलेगा ये भाग्य। तो ऐसे संगम युग में भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो। वो VIPs भी बैठे थे और नए बच्चे भी बहुत थे, तो आप सभी अपना ऐसे भाग्यवान समय में अपना भाग्य लेने लिए पहुंच गए हो। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि बताते हैं, सहज चाहते हो ना, सहज, सब कुछ सहज मिल जाए। वो मेडिटेशन के लिए भी आते ना, कहते हैं मेक इट इजी, उसको सहज करके दो, ऐसे नहीं कठिन कठिन मत बोलो, जो सहज हो। तो मेडिटेशन फॉर बिजी पीपल, क्योंकि उनको सहज चाहिए, तो बस अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, सबसे सहज वही है। तो उनके पास टाइम नहीं है तो दो लाइन में चाहिए, अभी दो लाइन में यही है ना। तो बाबा कहते हैं सब सहज चाहते हो ना, मुश्किल तो नहीं चाहते हो ना, इन बच्चों को यानी जो पुराने हैं इन बच्चों को तो भाग्य की सहज विधि मिल गई है। अब नए बच्चों को बाबा कहते हैं मिली है ना पुराने बच्चों को भाग्य की विधि, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बात करना। एक बात तो कर सकते हो ना, सहज चाहिए सब कुछ, तो एक बात तो कर सकते हो ना, हाँ करो या ना करो, एक बात सहज कर सकते हो, हाँ कहो या ना कहो, कहो हाँ जी, हाँ तो ऐसे ऐसे सिर हिलाया होगा, तो बाबा ने कहा जोर से कहो हाँ जी। तो सबसे सहज विधि है, क्या बताई होगी, अमृत वेले से लेकर सबको जो भी मिले, सबको क्या करना है, जो भी आपसे मिले उससे दुआएं लो और दुआएं दो, बस ये सहज काम करो, जो भी मिले उससे दुआएं लो और उसको दुआएं दो। चाहे क्रोधी भी आवे लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। दादी जी यही सदा कहती थी, 80% दुआएं काम करती है, बाकी 20% कुछ अपना पुरुषार्थ, बाकी दुआएं काम करती। तो बाबा कहते हैं उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितना जल्दी कार्य कर लेता है, हाँ कैसे उड़ जाता है, ऐसे दुआएं देना और दुआएं लेना ये भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआएं लो और सारा दिन दुआएं लो, अमृत वेले बाबा से दुआएं लो और फिर सारा दिन दुआएं लो और सारा दिन दुआएं दो और दुआएं लो, ये कर सकते हो? कर सकते हो तो हाथ उठाओ, भी आप लोग भी हाथ उठाओ, बस दुआएं दो दुआएं लो, बस यही बुद्धि में हो, बहुत अच्छा। कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? हाँ भाई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे आपको बार बार तंग करे तो, आपको तंग कर रहा है बार बार तो क्या करेंगे? देखो बाबा समझाते, देखो आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना, मास्टर दाता तो हो, दाता तो शिव बाबा है, पूरा मास्टर दाता तो हो, तो दाता का काम क्या होता है? देना। तो सबसे अच्छी चीज है दुआएं देना, और कुछ नहीं चाहिए, दुआएं। कई बार हम आते ना, कई कहते मैं उनसे पूछते आपको कुछ चाहिए, नहीं 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 आपकी दुआएं लेने आई है, आपसे दृष्टि लेने आई है, उनको कुछ चाहिए नहीं। तो बाबा कहते हैं तो दाता का काम क्या होता है? देना। तो सबसे अच्छी चीज है दुआएं देना, कैसा भी व्यक्ति हो लेकिन है तो आपका भाई या बहन ना, परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन हो ना, तो परमात्मा का बच्चा है वो, मेरा ईश्वरीय भाई है, ईश्वरीय बहन है, तो उसको क्या देंगे? बद्दुआएं देंगे क्या? बाप कभी बद्दुआएं देता है क्या? हाँ बाप कभी बद्दुआएं देगा? हाँ देता है, देगा, हाँ देता है या देगा, देता है, हाँ या ना बोलो, बाप कभी दुआएं बद्दुआएं देता है क्या? हाँ या ना कहो, बहुत खुश रहेंगे, हाँ बाबा कभी बद्दुआएं नहीं देता किसी भी बच्चे को, तो आप भी दुआएं देते जाओ तो सदा खुश रहेंगे। क्यों? अगर बद्दुआ वाले को भी आप दुआ देंगे, अब वो आपको दे न दे, वो दुआ आपको दे या न दे, लेकिन आप दुआ लेंगे तो दुख क्यों होगा? आपने तो बदुआ ली नहीं, आपने तो उसे दुआई ली, तो आपको दुख क्यों होगा? बाप दादा आप आए हुए बच्चों को एक वरदान देता है, वरदान याद रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे। वरदान सुनाए? कौन सा वरदान सुनेंगे आप? हाँ बाबा, वो वीआईपी भी सामने सामने ही बैठे थे, सुनेंगे। वरदान है अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप दुख लेना नहीं, वो दे लेकिन आप लेना नहीं। वो दुख दे कैसे देगा? कोई अपशब्द कुछ भी शब्द बोलकर या डांट कर गुस्सा कर, लेकिन आप वो दुख लो नहीं, क्योंकि देने वाले ने तो दे दिया लेकिन लेने वाले तो आप हो ना। तो उसने कुछ कह दिया और हो सकता भूल भी गया, उसने कह करके भूल भी गया, लेकिन आपने वो ले लिया दुख और सारा दिन उसको याद करते हैं, तो इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये कहा। तो बाबा कहते लेकिन लेने वाले तो आप हो ना, देने वाला लेने वाला नहीं है। वो देने वाला जो बदुआ है वो तो नहीं लेता है ना उसका दुख। अगर वो बुरी चीज देता है, दुख देता है, अशांति देता है, तो वो बुरी चीज है ना। आपको दुख पसंद है? नहीं पसंद है ना, बुरी चीज है। तो बुरी चीज हो गई ना, तो बुरी चीज ली जाती है क्या? अब आपको कोई सड़ी हुई चीज दे, पुरानी वुरानी कोई ऐसी चीज दे, आप लेके आप कहेंगे नहीं भाई हमारे काम की नहीं है, तो आप बुरी चीज ली, तो बुरी चीज ली जाती है क्या? कोई आपको बुरी चीज दे दे तो आप ले लेंगे? लेंगे नहीं लेंगे, तो लेते क्यों? अब उसने तो आपको समझो बदुआ दी या कोई ऐसा शब्द कहा जो अंदर जैसे चुभ गया, माना चुभ गया माना दुख ले लिया ना। तो बाबा कहते तो लेते क्यों हो? ले तो लेते हो, बाबा को पता है बच्चे ले तो लेते हैं। अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होता है? देने वाला दुखी नहीं होगा, वो तो कह के भूल भी गया, लेकिन लेने वाले दुखी होते हैं। आप होते हो या वो होता है जो देने वाला है? लेने वाला ज्यादा दुखी होता है। अगर अभी से दुख लेंगे नहीं, क्या क्या लड़ना चालू, अब जोर से बोलना चालू कर दिया, हाँ शिक्षा भले दो पर मुस्कुरा के दो तो उसको शिक्षा नहीं लगेगी, वो भी मुस्कुरा देगा। तो बाबा कहते हैं शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है कि क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। रहम भी करो, क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। दो शब्द याद रखो, कौन से? शिक्षा और क्षमा रहम। शिक्षा भी दो और क्षमा रहम भी हो। अगर रहम दिल बन के उसको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर रहम दिल बन के मुस्कुरा करके नहीं दी और जोर से डांट के दी तो वो तो और डीठ बन जाएगा। छोटे बच्चे भी ऐसे होते हैं, उनको बहुत गुस्सा किया तो डीठ बन जाते हैं, फिर माँ ने कुछ करेंगे ही नहीं, डीठ बन गए ना, स्टबर्न जिसको कहते हैं, डीठ, हाँ बस वो सुनेंगे ही नहीं। तो बाबा कहते अगर रहम दिल बन के उनको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर रहम दिल बन के नहीं देंगे शिक्षा तो शिक्षा एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकल जाएगी। कि नहीं करूंगा, जाने दो ना कितना गुस्सा करता है, नहीं करेंगे, वो आपकी शिक्षा भी बेकार गई। तो शिक्षा एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकल जाएगी। शिक्षा धारण नहीं होगी, ऐसे है ना, होता है ना, अनुभव है ना, सबको अनुभव होगा। आप भी किसका शिक्षक तो नहीं बन जाते? शिक्षक बनना जल्दी आता है, हर एक को शिक्षक बनना जल्दी आता है, लेकिन क्षमा करना दोनों साथ साथ चाहिए। अभी से रहम, रहम अभी से रहम, रहम करने की विधि है, क्या है रहम करने की विधि? शुभ भावना, शुभ कामना। जैसे कहते हैं ना, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है। सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है। ऐसे ही क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से, क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो ये नहीं करे, आप चाहते वो नहीं करे, ये नहीं हो, वो प्रत्यक्ष दिखाई देगा। क्षमा भी है ना साथ साथ, तो बाबा कहते वो प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि वो नहीं करे, तो वो भी समझेगा और नहीं करेगा। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगी। तो क्या वरदान मिला, न दुख देना है न दुख लेना है। पसंद है, पसंद है तो अभी लेना नहीं। अब पसंद है, दुख नहीं देना है, दुख नहीं लेना है, तो अभी कोई दुख दे तो लेना नहीं। गलती नहीं करना, जब बाप दुख नहीं देता तो फॉलो फादर तो करना है ना। बाबा कभी किसका दुख नहीं लेता, तो हम उनके बच्चे क्यों लेते हैं, कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते तो फॉलो फादर तो करना है ना, कर रहे हैं, बाबा जानते हैं। कभी कभी थोड़ा डांट भी देते हैं, डांटना नहीं, रहम करो, रहम के साथ शिक्षा दो। रहम भी हो और बाबा कहते क्षमा भी हो, मुस्कुराहट भी हो और शिक्षा भी हो, ये चारों एक साथ चले। रहम के साथ शिक्षा दो, बार बार किसको डांटने से और ये आत्मा जो है ना वो दुश्मन बन जाती है, वो दुश्मन बन जाती है, बार बार उसको डांटते ही रहते हैं तो वो दुश्मन बन जाती है, घृणा आ जाती है। परमात्म बच्चे हो ना, और आजकल तो हम देखते हैं जो ऐसे लोग हैं ना, उनको उनके अंदर सहन शक्ति भी नहीं है। अब एकदम कोई ऐसी चीज है जो बहुत कमजोर चीज है, उसको जरा सा किया तो फट गई, टूट गई, कमजोर है ना। तो आजकल की आत्माएं भी तो बहुत कमजोर है, तो उनको थोड़ा सा ही कहो तो उनको बहुत ज्यादा लगता है। तो बाबा कहते हैं घृणा आ जाती है। परमात्म बच्चे हो ना, तो जैसे बाप पतित को भी पावन बनाने वाला है, तो आप दुखी को सुख नहीं दे सकते हो। अभी जाकर ट्रायल करना, ट्रायल करेंगे ना तो पहले चरणों पर ट्रायल करो, ये दुख न दो न दुख लो। तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। परिवार में अगर कोई दुख दे दे तो भी दुख लेना नहीं, कोई कुछ भी कहे दुख लेना नहीं। हाँ, तो मुझे एक हंसी की बात आती है। एक भाई शिविर में आया था, तो कहता है बहन जी मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, मैं क्या करूं, ये गुस्सा निकलता ही नहीं है। तो मैंने अभी कहा बस एक सेकंड में बताओ मैं क्या करूं, अब एक सेकंड में क्या बताऊं। तो मैंने कहा ठीक है, जब कोई ऐसी बात आती है ना तो आपको ओम शांति, ओम शांति, फिर आगे बढ़ो। तो सचमुच वो ओम शांति याद कर लिया। अब घर गया, पत्नी ने कुछ कह दिया, बाद में आके बताया था कि पत्नी ने कुछ कह दिया ओम शांति, फिर माँ ने कुछ कह दिया, अब थोड़ी ओम शांति की आवाज वो टोन बढ़ गया ओम शांति, फिर पिता ने कुछ कहा, फिर बच्चों ने कुछ कहा, धीरे धीरे ओम शांति ओम शांति ओम शांति, और पड़ोसी ने भी कहा ओम शांति। अब कहता है ओम शांति और गुस्सा कर रहा है, बताओ, ओम शांति के साथ गुस्सा भी। तो देखो ओम शांति मुख से निकालना है पर वो गुस्से से निकाला, तो इसको थोड़ी ओम शांति कहेंगे। तो गुस्सा तो गया नहीं ना। तो बाबा कहते हैं परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख लेना नहीं, दुआएं देना दुआएं लेना, दुआएं देना रहम दिल बनना पहले घर वालों को करो। आपके घर का प्रभाव मोहल्ले में पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव देश में पड़ेगा, देश का प्रभाव विश्व में पड़ेगा। सहज है ना, अपने परिवार में शुरू करो, क्योंकि अपने परिवार में शुरू करो, क्योंकि देखो एक भी अगर क्रोध करता है तो घर का वातावरण क्या हो जाता है। एक भी क्रोधी व्यक्ति घर में होता है तो क्या वातावरण हो जाता है घर का, घर लगता है या युद्ध का मैदान लगता है। अब एक ने कहा, फिर उसका सामना किया, फिर उसने सामना किया, उसने सामना किया, तो घर लगता है या युद्ध का मैदान लगता है। उस समय अच्छा लगता है, नहीं लगता है ना, तो आप लोगों के लिए भी है। वैसे तो बाबा वो वीआईपीस को देख करके कह रहे हैं, तो बाबा फिर कह रहे हैं वीआईपीस को, आप लोगों के लिए भी है। तो आज वीआईपीस के साथ मधुबन वाले समर्पित भाई बहने भी सामने बैठे, तो सबके लिए है। अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से न दुख लेना न दुख देना। मधुबन में तो सब साथी है ना, तो अपने साथियों से भी, और फिर जो वीआईपीज है उनके नीचे काम करने वाले तो कार्यकर्ता बहुत होंगे, तो अपने अपने कार्यकर्ताओं से न दुख लेना न दुख देना, दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी, अभी उस समय क्या को अंदर में, अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा कहेंगे, परमात्मा बाबा, हाँ वो नहीं बैठे थे ना, तो परमात्मा बाबा मेरा बाबा कहेंगे, तो कहावत है, क्या कहावत है कि भगवान सदा हाजिर है। वो उस समय मेरा बाबा का, जैसे बाबा आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे, कि भगवान सदा हाजिर है, ये भक्ति में भी कहते हैं। अगर आपने दिल से अधिकार रूप में ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा, तो बाप हजूर हाजिर हो जाएगा। क्योंकि बाप किस लिए है, भगवान किस लिए है, बच्चों के लिए ही तो है ना। और अधिकारी बच्चों को तो बाप सहयोग नहीं दे, ये हो ही नहीं सकता है। अधिकारी बच्चों ने बाबा का, बाबा को आह्वान किया, बुलाया, तो बाबा ना आए, ना वो अधिकार दे शांति का, सुख का, तो बाबा कहते हैं वो बाप किस लिए है, बच्चों के लिए है ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि बाप सहयोग ना दे, असंभव। तो परिवर्तन करके जाना, जैसे आए वैसे नहीं जाना, वीआईपी को बाबा कहते हैं, परिवर्तन करके ही जाना। क्योंकि देखो, इतना खर्चा करके आए हो, टिकट तो ली होगी ना, खर्चा भी किया, समय भी दिया, तो उसकी वैल्यू तो रखेंगे ना, कुछ तो अपने जीवन में धारणा करके ही जाएंगे ना, इतनी टिकट खर्च किया, समय दिया, तो इसकी वैल्यू तो रखेंगे ना। तो वैल्यू क्या है, स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन, फिर विश्व का, देश का परिवर्तन। आपका घर आश्रम बन जाए, घर नहीं आश्रम। वैसे शास्त्र भी कहते हैं गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज वो गृहस्थ आश्रम नहीं रहा है, क्या बन गया है, युद्ध का स्थल बन गया है घर में। लेकिन आज आश्रम नहीं है, आश्रम अलग है, घर अलग है। तो घर को आश्रम बनाना, दुआएं देना और लेना, ये आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्ति क्या करती है, मूर्ति जो मंदिर में होती है वो क्या करती है, दुआएं देती है ना, बस जो आता है दुआएं देती है। मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हैं, दुआ दो, मर्सी मर्सी, हाँ रहम रहम करो, रहम कहो करो, चिल्लाते हैं। तो आपको भी क्या देना है, दुआ, ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार दो, शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। आज प्यार जो है दुनिया में वो तो स्वार्थ का प्यार है, सच्ची दिल का प्यार नहीं है। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो डोंट केयर, जाने दो ना, जाने दो ना, क्योंकि उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इसीलिए डोंट केयर। तो आप क्या करेंगे, आत्मिक प्यार देना, दुआ देना, दुख न लेना न दुख देना। देखो, आपको चांस मिला है, वो वीआईपीस को चांस मिला बाबा से मिलने का, तो देखो आपको चांस मिला है, बाप दादा को भी खुशी है। इतने जो सभी आए हैं, तो भारत के करीब 250 वीआईपीस रिट्रीट में आए थे, उनकी कोई ऐसी विशेष रिट्रीट रखी थी, तो वो बाबा से मिले 250। तो इतने घर तो आश्रम बन जाएंगे ना, 250 लोग आए हैं, बनाएंगे ना पक्का, या थोड़ा थोड़ा कच्चा, जो समझते हैं कुछ भी हो जाए थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा, समाने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी, लेकिन सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है। कोई ने कुछ भी कहा, आप सामने जवाब नहीं दो तो सहन शक्ति हो गई ना, तो सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है। सहन करना पड़ता है लेकिन फल बड़ा मीठा होता है। उस समय झगड़ा तो नहीं होगा, अभी आपने सामना किया, आपने भी कुछ कह दिया तो झगड़ा बढ़ सकता, आपने सहन किया कुछ नहीं कहा तो झगड़ा वहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन फल बड़ा मीठा होता है सहन शक्ति का। तो जो पक्का वायदा करते हैं घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, वो हाथ उठाओ। तो उन्होंने हाथ, देखो ये सब हाँ परिवार वाले बैठे हैं ना, सब हाथ उठा रहे हैं। हाँ मधुबन को भी तो बनाना है ना, सब हाथ उठाओ भाई, दुवन वाले भी, हाँ जरूर, बहुत अच्छा। फिर बाबा ने कहा देखा देखी में नहीं उठाना, वो उठा रहा इसीलिए मैं उठा रहा हूँ, देखा देखी में नहीं उठाना क्योंकि बाप दादा हिसाब लेंगे, फिर देख कर नहीं उठाना। सच्चा सच्चा मन का हाथ, मन से हाथ उठाओ भाई, मन से हाथ उठाओ, उठाएंगे तो हाथ से, मन से हाथ उठाओ, मन से हाथ उठाओ। अच्छा फिर बाबा, दादियां बैठी थी, ये 2005 की मुरली है, दादी जी भी बैठे थे, सब दादियां बैठी थी। तो दादी जी को बाबा कहते हैं, तो बोलो दादी इतने मंदिर बन जाएंगे तो आप उनको क्या प्राइस देगी? इतने सब जो आए हैं वो सब अपने घर को मंदिर बना दिया तो आप उनको प्राइस क्या देगी, तो आप क्या प्राइस देंगी? अब दादी ने उस समय उसको कुछ समझ में, मैंने दादी को तो पूछ लिया अचानक, तो दादी ने ऐसे उनको कहा, बाबा को कहा, अपने घर वालों को ये ले आवे, क्योंकि ऐसे तो सबको आने नहीं मिलता है, चलो परमिशन मिल जाएगी इनको, अपने घर वालों को भी लावे, अपने घर वालों को ले आवे, दादी ने कहा। अब ये तो प्राइज नहीं हुई ना, घर वालों को लाए मतलब प्राइज, उनको उनके पर्सनल के लिए प्राइज क्या दी, ये तो काम सुना दिया आपने उनको कि अपने घर वालों को ले आए। अब दादी को उस समय क्या क्या प्राइज देंगे, तो बाबा ने कहा, दादी ने कहा, बाबा जो आज्ञा करेंगे, जो बाबा कहेंगे वो मैं प्राइज दूंगी। देखो प्राइस तो आपको मिल जाएगी, फिर वीआईपीस को कहा, प्राइस तो आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लेकिन है, लेकिन है, वहां जाके करो भी ना, लेकिन लेकिन है, लेकिन बोले क्या, लेकिन आप जाने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना और 15 दिन के बाद, मास के बाद अपनी रिजल्ट लिखना, जो एक मास भी दुख नहीं लेगा न देगा उसको बहुत अच्छी प्राइस देंगे। देखो बाबा भी आपको देगा एक मास, न दुख लेना है न दुख देना है, प्राइस देंगे। अगर आप आएंगे तो मुबारक है, एक महीने के बाद फिर अगर आएंगे तो मुबारक है, चलो नहीं भी आ सके तो भी सेंटर पर भेज देंगे आपको प्राइस। अच्छा बाबा मुस्कुराए, अच्छा चारों ओर के देश विदेश के बच्चों की याद बाप दादा को मिली, चाहे फोन द्वारा याद भेजी है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे दिल में याद किया है, सबकी याद पहुंची बाबा को। तो बाप दादा सभी बच्चों को चाहे भारत के चाहे विदेश के रिटर्न में दुआएं और याद प्यार पदम गुना दे रहे हैं। अच्छा अब याद प्यार, चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को चारों ओर सर्व खजानों से भरपूर निर्विघ्न निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प रख चारों ओर के सर्व खजानों से भरपूर निर्विघ्न निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को साथ साथ सर्व परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को साथ साथ बाप दादा को सच्ची दिल का समाचार देने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को विशेष दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस माइट हाउस भव। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो, चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए दो बातें ध्यान पर रहे। पहली बात, हर आत्मा की चाहना को परखना। जैसे योग्य डॉक्टर उसको कहा जाता है जो नब्ज को जानता है, योग्य डॉक्टर नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। और दूसरा, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। स्लोगन, दूसरों की करेक्शन करने की बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। कईयों में आदत होने बस करेक्शन ही करेक्शन करते रहते। तो बाबा कहते हैं, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है, अब इसको इसकी अविद्या होनी चाहिए क्योंकि ये संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है बल्कि आपके पूर्व जन्म का था, बाबा का बनने से पहले का था। अभी आप ब्राह्मण हो, ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमारी आज ही जा रहे हैं आप? आज जाएंगे, कल शाम को जाएंगे, तो जरा ऊपर आओ दो मिनट। हमारी विजया बहन देखो 15 दिन से, कितने दिनों से यहाँ रह करके भट्ठियां कराने में बहुत मदद की, बहुत सहयोग दिया। ये दो मिनट सुनाओ, दो मिनट आओ, अपना अनुभव सुनाओ। उदयपुर और अपना बहुत बहुत नजदीक ही रहते हैं दो, और इस बार तो काफी दिन रहने का इनको अवसर मिला, तो क्या अनुभव आपने किया वो दो शब्दों में सुनाओ देना इनको। यहाँ बैठो। विजया दीदी को तो सब जानते हैं ना, उदयपुर जाते रहते हैं।
ओम शांति। ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि इतने दिन मधुबन में रहने का चांस मिला। मैं ट्रेनिंग के बाद रही थी यहाँ, केवल मधुबन था और कुछ नहीं था, सब दादियाँ थी, सब दादियों के नजरों में रहती थी। ट्रेनिंग के बाद 2 मास तक दादी ने रखा था और वो फीलिंग मुझे अभी यज्ञ की सेवा में रह के ऐसे लगा कि मेरा बचपना लौट के आया। दादियां नहीं हैं साकार में, परंतु दादियों का स्नेह हमें दोनों दीदियों से मिला, ब्लेसिंग्स मिली, और ऐसे लग रहा है मुझे कल से कि अरे जाना पड़ेगा। मैं जैसे ही फ्री होती थी दौड़ के सेंटर पे जाती थी। जब भी मधुबन आती हूँ, चार धाम किया, एक मिनट भी ज्यादा नहीं, जल्दी जाना है सेंटर की वो सेवा ये सेवा, न जाने क्या क्या बातें याद आती। परंतु अभी ऐसे हैं कि आने से पहले बहुत सारे मेरे सेंटरों के कार्य थे, कहाँ कुछ सेवाएं थी। लेकिन एक शुभ संकल्प आया कि हमने जीवन बाबा को दिया, सेंटरों को नहीं दिया। बाबा ने मुझे सेंटर पे भेजा तो बाबा की सेवा, सेंटर की सेवा बाबा करेंगे। और जो बाबा ने मुझे यज्ञ महायज्ञ जहां से अटूट प्यार है मधुवन से, तो वहां की सेवा तो वो क्यों नहीं करूं। पहले तो सोचा कि सिर्फ शांतिवन में बुलाया है, लेकिन ये दीदी का जब फोन आया तो मुझे लगा कि वो मधुवन में रहने का मौका। तो सच में मुझे भट्टी करने का चांस मिला, जब मर्जी बाबा के चारों धामों में जाने का, और यज्ञ से नजदीक बना। जैसे मैं यज्ञ की हूँ, ये जैसे दिल से जैसे मुझे एक महसूस आई, हम हैं बेशक, हमारा समर्पण मनाइए, हम यज्ञ में समर्पित हैं, हम यज्ञ से हेडक्वार्टर से रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अभी लगता मैं घर की हूँ, ये मेरा परिवार है। जैसे वो बचपन में मेरे को फील था, उससे ज्यादा अधिक अभी ज्ञान के आधार से, अनुभव के आधार से मैं मधुवन निवासी हूँ। मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं सेंटर सेवा के लिए जाती हूँ, मैं निवासी मधुवन की हूँ। तो ये मुझे 15 दिन जो अंदर का गहराई का फीलिंग, दो दिन से अच्छा जाना पड़ेगा, आज भी ऐसे लगा जाना पड़ेगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि आगे की सेवाएं हैं। लेकिन फिर भी मुझे 30 तारीख तक रुकने को कहा गया है, शायद नीचे सेवाएं देना, अगर जल्दी छुट्टी देंगे तो भी जाऊंगी, लेकिन यहाँ का जो अट्रैक्शन है वो उसकी कोई सीमा नहीं है। तो बहुत ही मुझे आनंद आया, खुशी रही, खुद के लिए स्टडी करने का, खुद का पुरुषार्थ करने का भर करके मुझे समय मिला। वहाँ हम सोचते हैं तो भी समय नहीं मिलता, यहाँ केवल अपने आप को परिवर्तन करने का, अपने आप को करेक्शन करने का, चेंजेस लाने का उसके लिए मौका मिला। जैसे हम कहते थे दादी को कि दादी 14 दिन की भट्टी रखो, आप लोगों ने 14 साल तपस्या किया, बड़ी दादी को कहते थे 14 दिन की भट्टी, दादी कहती थी 14 दिन सेंटर छोड़ के आओगे, तो कोई भी बहनें तैयार नहीं होती थी। लेकिन मुझे ये 14 दिन सच में वो अनुभव हो रहा कि खास करके मधुबन निवासियों का भी बहुत प्यार मिला, सबका दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। कितना भी करूँ वो ये एहसान भूल नहीं सकती और ना मैं रिटर्न कर सकती हूँ। हाँ इतना ही कहूँगी, जब भी दीदियाँ सेवा की जरूरत होगी, सेवा सेंटर की सेवा नेक्स्ट है, मधुबन की सेवा फर्स्ट है, इसलिए जरूर मैं आऊंगी। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाप दादा, दादियां, मुन्नी दीदी और आप दोनों दीदियां और सब मधुबन निवासियों को बहुत बहुत दिल की शुक्रिया।
आपको चोरी सबके लिए बना तो बोलो बताओ।
नहीं नहीं कल मैं कह रही थी विजया बहन कि हमको इच्छा है कि मैं सबको कुछ खिलाऊं, तो क्या खिलाऊं भाई, तो उदयपुर से आए, कहाँ से आए बताओ।
उदयपुर डूंगरपुर से आए हैं, हमारी उदयपुर में एक टीम है, क्योंकि बाबा ने ये यज्ञ की सेवा गिफ्ट में दी। दादी जानकी जी 2015 डूंगरपुर में आई थी, तो गिफ्ट में हमें उदयपुर दिया है, मधुबन की उदयपुर से सेवा प्रताप नगर की। तो वहाँ मेन आने वालों को रेजिडेंस का खिलाने पिलाने का, तो भगवान ने ये ड्यूटी दी है, तो हम सोचते हैं हमारे पास हैंड्स की कमी है, लेकिन ऐसे लगता है कि कुछ तो हम खिलाएं। और इतने दिन यहाँ पालना ली तो मैंने दीदी से पूछा कि भाई हमारी टीम है उदयपुर की, वो बहुत अच्छा कचौरी जिलेबी समोसा ऐसी चीजें बनाते हैं, क्योंकि जब वहाँ ग्रुप आता है तो मैं बहुत प्यार से खिलाती हूँ उन लोगों को। तो दीदी ने कहा ठीक है गर्मा गर्म कचौरी, तो खास आए हैं थोड़ा उठ के खड़े हो जाओ जो बनाने के लिए आए हैं
कचौरी खाई सबके लिए।
तीन माताएं आए हैं
उदयपुर से, आई
उदयपुर और डूंगरपुर दोनों जगह से,
डूंगरपुर से भी आई,
एक कन्या भी आई। तो आज शाम को सबको खिलाएं,
शाम को सबको कचौड़ी मिलेगी।
ये रखे खाने वाली नहीं, फ्रेश खाने वाली, गरम गरम खाने वाली।
थैंक यू ओम शांति।